की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नव युग का निर्माण कराने, नव युग का निर्माण कराने शिव ने जिन में स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर जन जन की सेवा में तन मन धन का किया समर्पण। एकता की माला में पिरो के किया विश्व परिवर्तन। अमृत वाणी बरसा के, सबका जीवन सुखदाई किया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
हमारे बीच आदरणीय शीलू दीदी जी, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है। आप सभी महान आत्माओं से अनुरोध है, करतल ध्वनि से हम दीदी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो ये बहुत निजी सुंदर कहानी है पिता श्री ब्रह्मा बाबा की। इतना इंस्पायरिंग है, इतना मोटिवेटिंग है कि आप सुनकर आपको लगेगा कि ऐसा पहले क्यों नहीं हमने सुना। क्योंकि परमात्मा 1936 में आ गए, कैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा निमित्त बने और शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू ये बताया नारी स्वर्ग की द्वार खोलने वाली देवी है। तो माताओं के लिए, बहनों के लिए कितना ना ये गर्वपूर्व बातें हैं कि कैसे नारी है स्वर्ग की द्वार खोलने वाली देवी है। तो विश्व के आदि पिता ब्रह्मा बाबा कैसे निमित्त बने, 1936 से लेकर अब तक की जो भी कहानी हुई, निजी कहानी, वो हम शीलू दीदी जी के जुबानी सुनेंगे। और एक खुशखबरी है कि ब्रह्मा बाबा को दीदी ने देखा भी है और उनसे पालना भी ली है और उनके मुकारविन से हम बाबा की जीवन कहानी सुनेंगे। आदरणीय शीलू दीदी जी,
ओम शांति। सभी कहेंगे माताएं ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी आप सभी ने एक गीत सुना, शब्द आपके कानों में गूंजे होंगे, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नव युग का निर्माण करने शिव ने उनमें स्थान लिया। तो उस नवयुग की रचना रचने वाले दिव्य पुरुष की मैं आपको अभी जीवन कहानी सुनाऊंगी और कैसे उनमें शिव परमात्मा ने प्रवेश किया और ये सारा ज्ञान हमें दिया और उनके द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक बीज उन्होंने डाला अपने तन मन धन का और आज हम देख रहे हैं इतनी बड़ी संस्था खड़ी हो गई। 1936 में यह कार्य शुरू हुआ और आज कहेंगे 36 से लेकर 2025 तक कैसे 88 years से यह भगवान का कार्य चलता आ रहा है। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा कौन थे, उसकी क्या जीवन कहानी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि ये नाम ब्रह्मा परमात्मा ने ही उनको दिया, नई सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाया शिव परमात्मा ने। तो ब्रह्मा को हम प्रजा पिता ब्रह्मा कहते हैं, सारी प्रजा का पिता। जो शिव बाबा की डायरेक्ट रचना बनी और उनके द्वारा हम सब ब्राह्मणों को रचा, हम ये नशे से कहते हैं कि हम सभी ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो ब्रह्मा कौन था, वो आदि पिता, जिस आदि पिता के द्वारा परमात्मा सतयुगी दुनिया की रचना की और उसका नाम रखा प्रजा पिता ब्रह्मा। सारी दुनिया प्रजा उनका पिता, आत्माओं का पिता तो एक परमात्मा है और शरीरों का पिता शारीरिक पिता है, तो उस हिसाब से दो पिता तो हर एक को है, एक पारलौकिक पिता शिव परमात्मा और दूसरा देह का पिता जो आपका लौकिक पिता जिसने आपको जन्म दिया। लेकिन ये एक तीसरा पिता है जो अलौकिक पिता कहलाता है, जो आदि पिता है, सृष्टि की रचना के आदि में जिनके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि रची, तो वो भी सबका पिता है। तो शिव परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, क्योंकि एक शिव पिता के बच्चे हैं। लेकिन प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते, क्योंकि वो आदि पिता है, तो उनके बच्चे हम भाई बहन हैं। इसलिए हम कहते हैं ये एक अलौकिक परिवार है, यह एक यज्ञ भी है, जिस यज्ञ में परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा हमें आहुति देना सिखाया। किसकी आहुति, 5 विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 मोटे मोटे विकार हैं जिसके कारण आज दुनिया नरक बन चुकी है, जिसके कारण आज संसार में दुख अशांति चिंताएं सब बढ़ती जा रही है। चारों ओर भ्रष्टाचार दुराचार अत्याचार अनाचार सारा दुष्प्रभाव संसार में बढ़ता जा रहा है। परंतु परमात्मा कहते हैं जब ऐसा समय आता है तब मैं आकर के इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। और उनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं आकर के अधर्म का नाश करता हूँ। और नई दुनिया की रचना के लिए ब्रह्मा को रचता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा कौन थे जिनके तन मन धन की आहुति इस यज्ञ में पड़ी और उसके आधार पर आज 140 देशों में हमारे सेवा केंद्र है। वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में फैल चुका है। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा लौकिक में एक जौहरी थे, हीरे जवाहरातों के जेवर बेचते थे। बहुत बड़ी उनकी शोरूम थी कलकत्ता में, और हैदराबाद सिंध में रहते थे। तब तो भारत अखंड था, पाकिस्तान तो अलग नहीं था, सिंध भी भारत का हिस्सा था। तो बाबा का घर हैदराबाद सिंध में था और उनकी बिजनेस कलकत्ता में थी। तो बाबा आया जाया करते थे, उनके पार्टनर कलकत्ता में रहते थे और खुद बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे। उनकी बहुत बड़ी बिजनेस थी, राजा महाराजा लोग उनके ग्राहक थे, क्योंकि हीरे जवाहरातों के जेवर कौन खरीदेगा, जो बहुत धनवान होंगे। तो राजा महाराजा लोग खरीदते थे और अंग्रेज लेते थे। उस समय अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिश रूल था, तो वो भी कलकत्ता में आते थे इनके दुकान पर और गहने खरीदते थे। तो बहुत अच्छा व्यापार था, तो धनवान तो थे ही, और जितने धनी थे उतने ही बहुत बड़े दानी थे। बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत बड़ा दिल था। कोई भी उनके द्वार पर जाता था तो कभी हाथ खाली नहीं जाता। बहुत सुखी परिवार था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे और शादीशुदा थे, पोतरे दोतरे थे। क्योंकि जब उनकी 60 वर्ष 60 ईयर्स की उम्र हुई तब उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो भक्ति तो बहुत करते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे, दान पुण्य बहुत करते थे, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? सत्य को जानने की इच्छा, सर्च फॉर ट्रुथ, सत्य को जानने की इच्छा, खुद को पहचानने की इच्छा। हम कौन है, ईश्वर कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों इस संसार में आए, हमें जाना कहाँ है, भगवान ने ये दुनिया क्यों रची, कई प्रश्न ये लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। तो बाबा के मन में भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते थे। फिर यहाँ तक प्रश्न आते थे कि अगर ये भगवान ने दुनिया रची है तो इतना दुख क्यों है, क्योंकि भगवान तो सुख का सागर है, तो ये दुख क्यों हुआ इतना। अब उसका जवाब उनको कौन दे? तो बाबा ने कई शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन किसी भी शास्त्र से उनको इनके उत्तर नहीं मिले। अनेक गुरुओं के पास गए तो गुरुओं से भी उनको ये उत्तर नहीं मिले। तो बाबा उसी खोज में थे सत्यता को जानने के लिए। तो कैसे, एक दिन की बात है, बाबा विष्णु की भक्ति करते थे, विष्णु के अटूट भक्त थे। हर मंदिर में बाबा दर्शन करने गए होंगे, सब दर्श सब मंदिरों में दूर दूर तक अमरनाथ की भी बाबा ने यात्रा की थी सत्य को जानने के लिए। तो भक्ति भी की और साथ साथ शास्त्र भी पढ़े और साथ साथ सत्यता की खोज भी थी। तो कैसे एक दिन बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, अब ये उसके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। और विष्णु चतुर्भुज उनके सामने उपस्थित होकर उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम भी मेरे जैसे विष्णु हो। तो जब बाबा ने ये सुना और देखा विष्णु के कई रूप उनके सामने आ गए और वो सभी रूपों ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने ऐसे उपस्थित हुए जैसे चेतन में उनसे बात कर रहे हैं। और जब ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा के मन में संकल्प चलने लगे कि ये कैसा वरदान मेरे इष्ट ने मुझे दिया, इष्ट का दर्शन हुआ ये तो बहुत भाग्य की बात है, लेकिन जो वरदान दिया अहम चतुर्भुज तत्त्वम, इसका मतलब क्या है? तुम मेरे जैसे हो ये मुझे मेरे इष्ट ने कहा, तो मैं तो इन जैसा नहीं हूं क्योंकि मैं तो गृहस्थी हूं, बाल बच्चों वाला हूं, बिजनेसमैन हूं और मेरा तो बहुत बड़ा व्यापार है, विस्तार है, और न मेरे अंदर ऐसे गुण हैं, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो पुजारी हूं, मैं तो इनका दास हूं। यही समझते ना सभी भक्त अपने इष्ट के लिए, तो इन जैसा मैं कैसे हूं, मैं तो नहीं हूं। तो ये गुरुओं से पूछने गया जो उनके गुरु थे उस समय कि इसका मतलब क्या है। तो गुरु ने उनको बताया कि हो सकता है तुमको भगवान का कुछ बड़ा काम करना है, इसीलिए भगवान ने आपको ये दर्शन देकर ये कार्य ये समझ दी, आपको प्रेरणा दी कि तुम मेरे जैसे हो इसलिए मेरा ये काम तुमको करना है। तो बाबा ने पूछा कौन सा काम मुझे करना है, वो भी तो मुझे मालूम हो, न मैं इन जैसा हूं न मैं इन जैसा कोई कार्य कर सकूंगा, फिर भी अगर मुझे हुक्म मिलता है तो मुझे कौन सा कार्य करना है वो भी तो मालूम पड़े, अब उसके लिए क्या करना होगा। तो गुरु ने उनको सजेशन दिया कि आप उसके लिए एकांतवास में चले जाओ, एकदम साइलेंस में चले जाओ, अपने धुंधे धोरी से, घर से, गृहस्थी से थोड़ा समय निकाल करके आप विष्णु का ध्यान और भी करो, तो आपको और प्रेरणा मिलेगी कि आपको क्या करना है। तो बाबा हैदराबाद सिंध में रहते थे, लेकिन बाबा वहां से चले गए बनारस, बनारस में उनके मित्र रहते थे, तो सोचा मैं एक महीना बनारस में रह करके अपने इष्ट का ध्यान करूंगा तो मुझे इष्ट के मेरे इष्ट के द्वारा कुछ और प्रेरणाएं मिलेगी कि मुझे क्या करना है। तो बनारस में उनको और प्रकार के विजन्स हुए, साक्षात्कार हुए। क्या क्या साक्षात्कार हुए? इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। उनको ये अनुभव हुआ कि जैसे ये दुनिया अभी खत्म हुई की हुई, तीन रूप से विनाश देखा साक्षात्कार में। एक एक रूप था अणु युद्ध के रूप में, न्यूक्लियर वॉर, एटॉमिक वॉर के रूप में। दूसरा रूप देखा सिविल वॉर के रूप में, आपस में लोग लड़ रहे हैं, बंदूकें चल रही है और खून की नदियां बह रही है, लाशें ही लाशें चारों ओर देखी। फिर तीसरा रूप देखा प्राकृतिक आपदाओं का, नेचुरल कैलेमिटीज, तो एटॉमिक वॉर, फिर उसके बाद गृह युद्ध, जिसको हम कहेंगे जैसे गृह युद्ध होता है, सिविल वॉर होता है, उस रूप से देखा, और फिर देखा नेचुरल कैलेमिटीज। इतनी कैलेमिटीज आई, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों ही तत्व, नो इतना कहर मचाया, इतना तांडव नृत्य किया, जो देखते ही देखते बाबा ने देखा सब कुछ नष्ट हो गया। तो कहां एटॉमिक वॉर, कहां सिविल वॉर, कहां नेचुरल कैलेमिटीज, और उसके बाद देखा एकदम प्रलय हो गई, कोई नहीं बचा इस संसार में। अब ये देखने के बाद बाबा को और भी चिंता होने लगी, हे भगवान, ये दुनिया क्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी? फिर अगर खत्म ही होनी है तो आपने पैदा ही क्यों की, जन्म क्यों दिया इसको? जैसे कोई बच्चा है, जन्मा और मर गया मान लो, तो सोचेंगे ना भाई इतनी कष्ट उठाया, जन्म दिया और फिर मर गया, दुख होता है ना। तो भगवान ने भी इतनी सुंदर दुनिया रची है और ऐसे विनाश हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? फिर दूसरा प्रश्न उठा कि उसने मुझे क्या करना है, खत्म हो जाएगी दुनिया तो मुझे कुछ करना हो तो वो मुझे बताएं, अब वो फिर कौन बताए? लेकिन वो विष्णु का ध्यान करते रहे, और एक दिन की बात है कि बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ। बाबा को ऐसे अनुभव हुआ एक अखंड ज्योति का महतत्व, गोल्डन रेड लाइट से वो एलिमेंट इतना इतना सुंदर लग रहा था, चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, और उसमें एक उल्टा झाड़ जिसका बीज ऊपर है, और उस वो झाड़ सितारों का, वो आत्माओं का झाड़ था, निराकारी झाड़ था, और उस झाड़ में वो आत्माएं छोटी छोटी सितारों के माफिक दिखाई दी, और फिर धीरे धीरे वो सितारे उस झाड़ से नीचे उतरे, और धीरे धीरे नीचे धरती पर आए, और जैसे ही धरती पर आए तो बाबा ने देखा कि एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप लेता गया, गॉड्स एंड गॉडेसेस का संसार बाबा ने देखा, बहुत ही सुंदर संसार, कहां उन्होंने विनाश देखा था, सब कुछ जलमग्न हो गया, प्रलय हो गई, कोई नहीं बचा, और फिर कैसे आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आई, और कैसे एक एक आत्मा देवी और देवता बनती गई, और एक सुंदर संसार बन गया, पांचों ही तत्व का सुंदरतम स्वरूप बाबा ने देखा साक्षात्कार में। तो फिर बाबा देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, और फिर बाबा ने देखा एक सोने का महल जिसकी दीवारों पर हीरे जवाहरा जड़े हुए थे, और सिंहासन पर लक्ष्मी नारायण विराजमान थे। फिर देखा कि वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण उस सिंहासन से उठे और बगीचे में आए, और जैसे बगीचे में आए तो वहां जो बगीचे में फव्वारे थे, फाउंटेन्स, वो सारे फाउंटेन्स चालू हो गए, इतनी सुगंधित ब्रीज हवा बन गई, लाइट ही लाइट चारों तरफ जग गई, और एक बहुत सुंदर दृश्य बाबा ने देखा। और फिर एक आवाज उनको सुनाई दी, एक आकाशवाणी उनको सुनाई दी, और वो आकाशवाणी क्या थी? आकाशवाणी में उन्होंने देखा कि कैसे वो विनाश हो रहा है और फिर स्थापना हो रही है। तो आकाशवाणी क्या थी कि उठो जागो लखीराज, उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है, और ये सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है। ये भगवान ने उनको काम दिया, तो ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है। अब बाबा तो देखता ही रह गया कि ऐसी दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा, इतनी सुंदर दुनिया, ये कोई मनुष्य का कार्य तो होगा नहीं। मनुष्य में क्या शक्ति है कि सारी दुनिया को इतना सुंदर बना दे। चलो अपने घर को सुंदर बनाएगा, अपने मोहल्ले को बनाएगा, अपने टाउनशिप को बनाएगा, लेकिन सारी दुनिया को ऐसा स्वर्ग कैसे मनुष्य बना सकता है। तो लेकिन भगवान ने उनको ये काम दिया, तो भगवान को कहता है, हे भगवान, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास कौन सी शक्ति है। लेकिन उनको आगे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना है। तो फिर बाबा को लगा कि इतना बड़ा काम भगवान ने दिया है और मैं बनारस में बैठ करके उसी का ध्यान कर रहा हूँ, तो मुझे अभी कुछ काम करना होगा। तो पहला काम क्या किया उसने, बाबा बनारस से वापस कलकत्ता गए और कलकत्ता में अपने पार्टनर को ये सब बातें बता दी, और फिर कहा कि मैं अब ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, मैं वाइंड अप करता हूँ सारा बिजनेस। अभी हम सब 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो बाबा को इतना वैराग आ गया इस दुनिया से और सोचा ये बिजनेस मैं पूरी वाइंड अप कर दूंगा। बाबा को हीरे जो थे वो पत्थर दिखाई देने लगे, उनकी दृष्टि वृत्ति सब कुछ बदल गई। और जब वो वापस अपने घर पहुंचे, हैदराबाद सिंध पहुंचे, तो बाबा का जीवन बदल चुका था। बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता पहन के बाबा रहते थे और कमरे में ही बाबा तपस्या करते थे, क्योंकि अंदर में उनको ये लगन थी कि भगवान को मुझसे कोई कार्य कराना है। वो क्या कराना है, कैसे कराना है, मैं ऐसी दुनिया कैसे स्थापन करूँगा, कुछ पता तो है नहीं। लेकिन पर वैराग्य उनको बहुत आ गया अंदर ही अंदर मन में, तो अपने पार्टनर से सब वो सब कुछ वाइंड अप करके वापस हैदराबाद सिंध चले गए। तो परिवार वाले भी बहुत हैरान कि बाबा को क्या हो गया है, इतना परिवर्तन कैसे हो गया है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एक दिन बाबा अपने कमरे में बैठे थे एकदम ध्याननिष्ठ अवस्था में, और उसी समय उनको और एक साक्षात्कार हुआ, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है वो धीरे 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 उनके निकट आया, और वो निकट आते 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 उनके अंदर प्रवेश हो गया। ऐसे बाबा ने देखा वो ज्योति उनमें समा गई, तो ऐसे उनके अंदर वो ज्योति समा गई ये बाबा ने देखा, और बाबा की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हो गई और उनके मुख से एक आकाशवाणी निकली, शिव परमात्मा ने उनके मुख से अपनी पहचान दी, परिचय दिया। क्या परिचय दिया? निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निजानंद रूप हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। तो शिव ने अपनी पहचान उनके मुख से दी। अब घर वालों ने ये सुना, परंतु उनको समझ में तो नहीं आया कि कोई शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई है और वो शिव ने अपना परिचय उनके मुख से दिया। उन्होंने कुछ भी समझा नहीं। लेकिन जब वो ध्यान से नीचे उतरे और आंखें खोली, तो एकदम लाल लाल बल्ब जैसी आंखें, इतनी तेज और चेहरा इतना सौम्य और ललाट इतना चमक रहा था। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा, कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, और वो प्रकाश वो शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई, प्रवेश कर गई। ये जैसे बाबा ने अनुभव किया, अब वो प्रकाश वो शक्ति मुझसे कुछ कार्य कराएगी। अभी क्या कराएगी वो उनको तो समझ में तो आया नहीं, पर कुछ कार्य कराएगी। और फिर क्या हुआ, उसके बाद चमत्कार होने लगे। कौन से चमत्कार? बाबा खड़े होते थे धोती कुर्ता पहन करके, और बाबा को जैसे देखते थे तो घर वाले बाबा को देखते थे खड़े, और अचानक वो बदल जाते हैं। तो और जो सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ता पहने हुए वो बदल कर श्री कृष्ण खड़े हैं, जैसे श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी बांसुरी बजाता हुआ पीताम्बरी पहना हुआ वो खड़े हैं और सबको दर्शन दे रहे हैं। तो परिवार वालों को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा जादू है, बाबा को ये कोई जादू मिल गया है जो इनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। और दूर दूर तक ये न्यूज फैल गई कि हैदराबाद सिंध भारत है। उसमें भारत ही था, एक ही भारत था। हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, उनको देखने से, उनके उनकी दृष्टि लेने से वो बदल जाता है और श्री कृष्ण का अनुभव होता है। अमेरिका तक ये न्यूज गई, वहाँ की टाइम मैगजीन में इंटरनेशनल न्यूज के रूप में ये बात छपी, तो एक क्रांति हो गई और दूर दूर से लोग बाबा को देखने आते थे कि चलो हम श्री कृष्ण का दर्शन करने जाएं। तो ब्रह्मा बाबा को सब तो पहचानते नहीं थे, कोई कोई पहचानते थे, लेकिन जो साक्षात्कार हुए एक क्रांति के रूप में, इट वाज वो अमेजिंग था। क्योंकि कई प्रकार के साक्षात्कार हुए, लोगों को घर बैठे भी हुए, घर बैठे श्री कृष्ण के दर्शन किए और फिर वो श्री कृष्ण के नजदीक जा रहे हैं तो वहां से हट बदल कर ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और श्री कृष्ण दूर से इशारा कर रहे हैं, मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, मैं यहाँ इनसे इनके पास सबको मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा। अब ये कौन थे ब्रह्मा बाबा, ये सब तो जानते नहीं थे, परंतु एक आध्यात्मिक क्रांति हो गई उस समय कि चलो चलो श्री कृष्ण का दर्शन करने चलेंगे, दादा लेखराज को देखने से श्री कृष्ण का दर्शन होता है। उस समय बाबा की आयु 60 वर्ष की थी, 60 इयर्स, और बिल्कुल जैसे अभी रिटायर्ड हो गए, सब धंधा खत्म और बिल्कुल ध्यान अवस्था में रहे। तो ये क्रांति, एक क्रांति हुई और दूसरी क्रांति क्या हुई कि कन्याओं माताओं को ये अनुभव हुआ, कन्याएं माताएं, पुरुषों को नहीं हुआ, मेन पुरुषों को नहीं, लेडीज को हुआ, कन्याओं को ज्यादा हुआ, छोटी छोटी कन्याओं को हुआ। तो उनमें से एक है हमारी जगदम्बा सरस्वती, जिनको हम अलौकिक माँ कहते थे। तो ये उस समय 16-17 साल की थी, स्कूल पढ़ती थी, 16 साल की थी और बहुत होशियार थी, अवार्ड्स लेती थी, गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, सब में अवार्ड्स लेती थी, मेडल्स लेती थी। लेकिन उनके पिता ने शरीर छोड़ा था, बहुत उसका दुख उसकी माँ को था, उसको भी था। तो माँ का दुख जब देखती थी, माँ इतना रो रही है पति के वियोग में, तो इनको सहन नहीं होता था। ये माँ को कितना भी चुप कराती थी, माँ रोती रहती थी, रोती रहती थी। तो किसी ने इनको कहा कि अपनी माँ को बाबा के पास ले जाओ, वहां वो श्री कृष्ण का दर्शन करेगी तो उनको शांति मिलेगी। तो अपनी माँ को बाबा के पास ले गई और जैसे ही इसकी माँ ने बाबा को देखा, बस उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया बाबा से, और एकदम हंसने लगी, खुशी के मारे हंसने लगी। तो ये भी एक जैसे न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, इतना परिवर्तन उसको आया बाबा को देखने से। अब बाबा इनके परिवार को जानते थे, इनके पिता को भी जानते थे कि वो भी एक ऐसा बिजनेसमैन था बाबा की तरह, वो भी हीरे जवाहरातों के जेवर बेचता था, लेकिन उनको घाटा पड़ गया, बहुत एकदम देवाला मार दिया, बैंकरप्ट हो गया एकदम। तो जब बैंकरप्सी आ गई, कुछ भी नहीं रहा, तो फिर अपना घर बार सब कुछ देना पड़ा। तो इनकी जो मामा थे उनके घर में रहने लगे, तो माँ तो बहुत दुखी थी और पता था तो ये माँ बेटी ही है अभी। तो बाबा ने इनसे पूछा कि आप हमारे पास ही रहो और आप जो बाबा गीत लिखते हैं, भजन लिखते हैं, वो आप तर्ज निकाल करके गाओ, क्योंकि वो गाती भी थी, तर्ज भी निकालती थी, बहुत सुरीली आवाज थी और हारमोनियम भी बजाती थी, सितार भी बजाती थी, बहुत विशेषताएं थी उनमें। तो अब माँ बेटी दोनों बाबा के पास रहने लगी और बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ओम। तो जैसे ओम की ध्वनि करते थे तो बाबा से उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और फिर मम्मा को कहा, इनको कहा कि आप भी ओम की ध्वनि करो, तो ये जैसे ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे राधे का साक्षात्कार हुआ, तो इनका नाम पड़ गया ओम राधे, क्योंकि ओम की ध्वनि करने से राधे का साक्षात्कार इनसे होता था। तो इसी प्रकार बहुत सारे आए और एक एक आकर के बाबा के पास समर्पित हो गए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है दादी प्रकाशमणि का, जो उस समय 14-15 साल की थी। वो भी स्कूल पढ़ती थी और गीता बहुत पढ़ती थी, तो गीता का ज्ञान इनको बहुत कंठस्थ था। बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। अब इनको घर बैठे साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का घर बैठे, और फिर बाबा उनके नजदीक आए और श्री कृष्ण ने उनको कहा मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। अब इनको तो बाबा, वो तो जानती नहीं थी बाबा को, लेकिन फिर जब स्कूल गई तो सब जो लड़कियां थी स्कूल में वो भी कहने लगी कि एक दादा लेखराज है, उनके पास जाने से श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, चलो हम लोग चलेंगे। इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। अब पिता से जब तक वो पूछे तब तक पिता ने ही इनको कहा कि बेटी यहाँ एक सत्संग होता है, क्योंकि बाबा सत्संग कराते थे, गीता का सत्संग करते थे बाबा, उनके परिवार वाले बैठते थे और भी बैठते थे तो वो सत्संग करते थे। तो बाबा ने तो इन्होंने ये 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 जब पिता ने उनको कहा कि यहाँ दादा लेखराज है, उनसे कृष्ण के दर्शन होते, तुम जाके देख कर आओ, तो ये गई। और जैसे वहाँ गई, सत्संग चल रहा था, ओम की ध्वनि हो रही थी, तो ये ध्यान में चली गई। और जो सवेरे इसने साक्षात्कार किया था श्री कृष्ण का और बाबा का, वो साक्षात्कार इनको फिर से हुआ, बाबा के सामने हुआ, बिल्कुल अनुभव हुआ कि मैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ। तो ये उस प्रकार का अनुभव जब उनको हुआ तो बाबा ने उनको बुलाया और बाबा ने इनको कहा कि देखो मैंने ना स्कूल बनाया। उस समय बाबा ने एक स्कूल बनाया था, लड़कियों का स्कूल, जिसमें लड़कियों को वो एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ गीता और भारत के जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो भी पढ़ाना था। तो बाबा ने उनसे पूछा आप गीता का जो लेसन है वो बच्चों को पढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पण करना होगा। तो इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो पिता ने तो बहुत सहर्ष उनको छुट्टी दे दी कि तुम अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करो और स्कूल में पढ़ाओ। तो मानो कि वो फिर आगे स्कूल में नहीं गई, बस उतना ही पढ़ाई हुई उस एकेडमिक स्कूल में और वो समर्पित हो गए। तो ऐसे ये सारे बच्चे भी समर्पित हो गए। शिव परमात्मा ने ये सबको एक आज्ञा दी कि आप सभी अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो सब छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें, इन सब ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो जैसे ये न्यूज सब जगह फैली कि ये छोटी छोटी कुमारियों ने प्रतिज्ञा की है कि जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो इनके जो पेरेंट्स थे वो थोड़ा विरोध करने लगे कि ये छोटे छोटे बच्चों को आपने कैसे ये प्रतिज्ञा कराई, इन्होंने तो दुनिया भी नहीं देखी है। लेकिन बाबा ने कहा ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, मेरे पास क्या ताकत थी, मैं तो एक बिजनेसमैन था, ये तो भगवान का चमत्कार है, वो ही करा रहा है, ये मुझे भी भगवान ने ये आदेश दिया कि तुमको अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। मैं तो फैमिली में रहता हूं, लेकिन ये भगवान का आदेश है। लेकिन थोड़ा विरोध हुआ और फिर एक केस भी हुआ। लेकिन जो 18 साल से बड़े थे, लड़कियां बड़ी थी, उन्होंने तो कहा हम तो अभी 18 साल से ऊपर हैं, तो हम तो जो खुद डिसीशन लेना चाहेंगे हम ले सकते हैं। और जो छोटे थे वो तो चलो उनको तो जाना पड़ा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार बन गया, अलौकिक परिवार बन गया। और वो फिर बाबा हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। कराची में बहुत बड़े बड़े भवन बनाए और वहाँ पर भवन मिले किराए पर और वहाँ सब रहने लगे। तो कम से कम 300 से ऊपर ये भाई बहनें, जो बहनें ज़्यादा थी, वो सब समर्पित रूप से उन्होंने तपस्या की। तो 1937 से लेकर के 1950 तक 14 साल इन्होंने तपस्या की। तो ये जो 14 साल की इनकी तपस्या के कारण इतनी इनमें शक्ति आ गई, जो वो हमारी दादियां बन गई। हम उनको कहते थे हमारी दादियां, जिनसे हम प्रेरणा लेते थे। तो 14 साल की तपस्या बहुत काम आई। तो वो भी तो उस समय छोटी छोटी थी। तो 1937 से 1950 तक कराची में रह करके दुनिया की निगाहों से दूर रहे। तो वो रोज सुबह कैसे वहाँ सागर के किनारे पर जाती थी, जैसे मुंबई में जुहू बीच है या चौपाटी है, वैसे कराची में वहाँ पर है क्लिफ्टन बीच है। तो उस क्लिफ्टन बीच पर ये बहनें जाती थी, शर्ट और हाफ पैंट्स पहन करके एक्सरसाइज करती थी और सागर के किनारे बैठ करके तपस्या करती थी। तो 14 साल इन्होंने दुनिया का मुंह नहीं देखा, बिल्कुल आइसोलेटेड रही। और इन्हीं 14 सालों में दुनिया का नक्शा बदल गया। क्या नक्शा बदल गया, कैसे क्या नक्शा बदल गया? 14 साल 37 टू 1950 तक दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 टू 1945। ये 6 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ। परंतु ये संस्था कराची में ही थी। और फिर तो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उस समय ब्लडशेड हुआ, गृह युद्ध हुआ, लेकिन ये संस्था वहाँ सुरक्षित थी, कराची में थी। फिर वो कराची सिंध ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन इस संस्था को किसी ने आंच तक नहीं लगाई, भगवान ने कैसे उनकी सुरक्षा की। तो तपस्या भी चलती रही और 47 में पार्टीशन के बाद भी ये संस्था वहीं रही और तपस्या की। और फिर उसके बाद 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हो गया, सब कुछ शांति आ गई, दो देश ऑफिशियली डिक्लेयर हो गए, तो 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक बनाई 26 जनवरी तक को, उसके बाद शिव परमात्मा का आदेश मिला कि अभी आप सभी भारत में जाओ, क्योंकि वो पाकिस्तान बन गया था। तो भारत में जाओ और भारत में एक पहाड़ पर जाओ और वहाँ अपना हेडक्वार्टर्स बनाओ। तो ये करीब 300 से अधिक थे भाई बहने, ये सब भारत में आए और अपना सब कुछ सामान लेकर आए। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत आतंक फैल गया, लोगों को जो मुस्लिम नहीं थे उनको कहा सब हिंदुस्तान चले जाओ, नहीं तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो सिर कटवाओ, सर कलम, बस यही उनका रास्ता था। तो कई हिंदू जो थे, सिख थे, वो सब वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारत में आए, और कईयों का तो रास्ते में ही कत्ल कर दिया। मानो पूरा सिविल वॉर उस समय हो गया था 1947 में। तो अब जब परंतु ये संस्था तो वहीं की थी, वहीं रही, कैसे शिव बाबा ने उनकी रक्षा की, जो कोई भी आतंक फैलाने वाला अंदर नहीं आ सकता था। फिर 1950 में जब शांति हुई तो ये भारत में आए, तो ये सब कुछ सामान लेकर आए, कुछ भी छोड़ा नहीं। वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको एक शिप दिया और ये सारा सामान उस शिप में भर कर के ले आए, और शिप में कैसे सारा अपना छोड़ करके भारत में आए हैं, क्योंकि भगवान ने कहा। तो माउंट आबू स्थान चुना। माउंट आबू कराची से बहुत दूर नहीं है, ये वेस्टर्न बॉर्डर है, तो इस वेस्टर्न बॉर्डर से थोड़ा सा ही दूरी पर कराची है। तो ये बाय शिप आए ओखा बंदरगाह, सौराष्ट्र में ओखा हार्बर है, वहाँ पर ये उतरे और शिप से, और फिर वहाँ से ट्रेन लेकर के ये आबू आए। ये 1950 की ट्रेन है। 14 साल इन्होंने दुनिया का मुंह नहीं देखा, और 14 साल के बाद कराची से निकल करके भारत में आए। और उसके बाद या आबू रोड स्टेशन पहुँचे तो माउंट आबू, जो आपने कुछ देख के भी आए होंगे, कुछ जाएंगे, माउंट आबू एक स्पेशल प्लेस है। वहाँ पर राजाओं महाराजाओं का वो समर कैपिटल है था। राजस्थान में जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स के राजा थे, कई रियासतें थी राजस्थान में, तो उन सब के जो महल है वो माउंट आबू में है। और राजा लोग गर्मी के दिनों में माउंट आबू आते थे, जयपुर पैलेस, जोधपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, अलवर पैलेस, ये सब पैलेसेस है, महल है माउंट आबू में। और 1950 में जब राजाई खत्म हो गई, गणतंत्र बन गया भारत देश, तो उसके बाद इन सब ने अपने जो भी उनके महल थे माउंट आबू में, उनको होटल बना दिया। तो ये सारे जो महल है माउंट आबू में वो होटल है। तो कुछ होटल है, कोई हॉस्टल है, कोई स्कूल है माउंट आबू, तो कोई और उद्योग नहीं है, नो अदर कोई इंडस्ट्रीज है, कुछ नहीं, या तो टूरिस्ट प्लेस है या तो वहाँ घूमने का स्थान है, मंदिर बहुत है। तो राजा महाराजा लोग यहाँ आते थे गर्मी के दिनों में, अप्रैल मई जून उनका समर कैपिटल आबू में होता था, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी होती थी, तो माउंट आबू का वेदर बहुत प्लेजेंट है। उस समय तो पंखे भी नहीं होते थे, पंखे ही नहीं होते थे, ज़रूरत ही नहीं होती थी, इतना स्वच्छ शुद्ध वातावरण है। और बहुत उनको कहते हैं कि ओएसिस इन अ डेजर्ट, चारों ओर डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लेकिन माउंट आबू बहुत हरियाली है। अभी भी थोड़ी बारिश पड़ी है तो माउंट आबू में इतनी हरियाली है, और आप जाएंगे माउंट आबू, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पौना घंटा लगता है, 400 फीट की ऊंचाई पर है, 4000 फीट की ऊंचाई पर है माउंट आबू। और उनका जो हाईएस्ट पीक है ये अरावली रेंज है, अरावली रेंज ऑफ माउंटेन्स, और इसका हाईएस्ट पीक माउंट आबू में है, जिसको गुरु शिखर कहते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, चारों ओर शिव के मंदिर है यहाँ। तो उसके बाद ये स्थान उन्होंने चुना, तो एक ब्रिज कोठी, भरतपुर राजा का महल उन्होंने चुना, क्योंकि 350 भाई बहने थे तो वहाँ आकर के रहे। तो ये आबू रोड स्टेशन पहुँचे हैं और फिर वहाँ से माउंट आबू गए हैं। और माउंट आबू उस समय एक जंगल था, बिल्कुल जंगल, एकदम जंगल, और जंगल माना आप समझ सकते हैं पहाड़ पहाड़ और जंगल। तो बाबा ने बहुत तपस्या की, वहाँ पहाड़ों पर बैठ करके तपस्या की, पेड़ों के नीचे बैठ करके तपस्या की, मम्मा ने भी बहुत तपस्या की, इन सब बहनों ने भी बहुत वहाँ तपस्या की। तो 1950 में ये माउंट आबू आए और फिर 1950 से 52 तक माउंट आबू में ही रहे और फिर शिव परमात्मा ने उनको ये संदेश दिया कि अभी भारत में जगह जगह जाके सेवा करो। जो आपने इतना ज्ञान 14 साल जो सुना है अब वो सबको बांटो। तो उनको कई निमंत्रण मिले, भारत के कोने कोने से निमंत्रण मिले, जो बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए थे उनके रिश्तेदारों ने उनको निमंत्रण दिया। तो कई जगह गए, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, कानपुर गए, लखनऊ गए, बहुत जगह गए और जहाँ जहाँ गए वहाँ पर सेवाएं शुरू की। और देखते ही देखते बाबा के कई सेंटर खुल गए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, आप मनोहर इंदिरा दादी हैं, आप भी 12-13 साल की थी जब आप 1936 में बाबा के सामने आई और आपको भी बहुत साक्षात्कार हुए। तो इनके जो रिश्तेदार फैमिली वो दिल्ली में रहती थी, तो जब ये भारत में आए तो इनकी फैमिली ने इनको निमंत्रण दिया कि आप दिल्ली आइए और आपने जो इतना ज्ञान सुना है वो हमको भी थोड़ा सुनाइए, हमको भी ये ज्ञान दीजिए। तो बाबा ने इनको दिल्ली भेजा और दिल्ली में जब अपने लौकिक घर में गई वहाँ ये ओम की ध्वनि करने लगी, ओम बहुत लंबा, और जैसे ओम की ध्वनि करती थी तो इनके सारे फैमिली मेंबर्स को इनसे देवी का साक्षात्कार होता था, देवी। तो ये भी एक न्यूज बन गई कि पहाड़ों से एक देवी आई है और देवी से वो साक्षात्कार होता है। तो बहुत निमंत्रण मिलने लगे, कई मंदिर वाले निमंत्रण देने लगे कि आप हमारे पास आकर के प्रवचन करो। फिर बाबा जमुना के किनारे, फिर दादी जमुना किनारे पर जाकर के भाषण करती थी। तो इतना फैल गया कि लोगों ने कहा कि अभी आपको यही रहना है। तो बाबा ने इनको कहा अगर आप ये चाहते हैं कि आप वहीं रहो तो इनको कहो एक मकान लेकर दो, हम वो मकान में ये ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे। तो ये मकान लेकर दिया और हमारा पहला सेवा केंद्र आबू के बाहर दिल्ली में खुला 1952 में, ये दिल्ली में खुला। तो बस फिर तो चारों ओर सेंटर खुलते गए और भाई बहने मधुबन माउंट आबू आते रहे, बाबा तपस्या करते रहे, दादी अपनी मम्मा वो भी सब जगह जाती रही, लखनऊ गई, कानपुर गई, और मम्मा से भी उनको लक्ष्मी का साक्षात्कार होने लगा। मानो ये इतना फैल गया जो चारों ओर बाबा के सेंटर खुल गए। और फिर तो मम्मा बिल्कुल तपस्या करती थी, बहुत तपस्या उन्होंने की, एकदम अव्यक्त स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। और कैसे एक बॉडीलेस स्टेज क्या होती है, अशरीरी अवस्था क्या होती है, फरिश्ता स्थिति क्या होती है, विदेही स्थिति क्या होती है, वो सब उसने अनुभव किया और जो बहनें थी उनको भी अनुभव कराया। और धीरे धीरे कैसे न्यारी प्यारी होती गई, तपस्या दोनों ने की और न्यारी प्यारी होती गई। और 24 जून 1965 में मम्मा ने अपना देह त्याग किया, शी लेफ्ट हर बॉडी एट द एज ऑफ 48 ईयर्स, 48 साल की उम्र में आपने अपना देह त्याग किया। फिर दीदी मन मोहिनी, वो भी एक सीनियर बहन थी जो हैदराबाद सिंध में समर्पित हुई, और उसकी विशेषता ये थी, ये बहुत धनी परिवार की थी। मम्मा तो सब, वो तो दिवाला मारा उसके पिता ने, तो वो तो बहुत गरीब थी, लेकिन ये बहन बहुत धनवान थी। इनकी जो फैमिली थी वो बड़े बिजनेसमैन थे, और उनकी बिजनेस सारी दुनिया में थी। जैसे सिंधी लोगों की बिजनेस पूरी दुनिया में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बहुत बिजनेस है उनकी, तो इनके इनके भी रिश्तेदार ऐसे बिजनेसमैन थे। तो वो जब माउंट आबू में आए, यानी भारत में आए कराची से, तो मुंबई में उन्होंने अपने कॉलेज खोला और हॉस्पिटल खोले। उसमें दो हॉस्पिटल आप जानते होंगे, दो कॉलेजेस है, एक कॉलेज है जय हिंद कॉलेज और दूसरा कॉलेज है ये केसी कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज। तो ये इनके चाचा चाची थे। फिर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, तो दिल्ली बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल, ये इनके अंकल आंटी थे, उन्होंने बनाया जसुमती लोकुमल। तो ये सिंधी लोग जब सिंध से भारत में आए तो दिल्ली तो मुंबई में उन्होंने हॉस्पिटल और कॉलेजेस खोले। तो वो सब जानते होंगे, जय हिंद कॉलेज और ये केसी कॉलेज और जसलोक हॉस्पिटल। तो उन्होंने तो ये बहुत धनवान थी, लेकिन एक सेकंड में इसने कैसे सबको त्याग किया, क्योंकि श्री कृष्ण का उनको बहुत साक्षात्कार हुआ। तो मम्मा ने देह त्याग के बाद फिर दीदी मन मोहिनी जी वो मुख्य प्रशासिका बनी। आप लोग मन मोहिनी वन में ठहरे हैं, तो वो यही मन मोहिनी दीदी है जिनका यादगार वहाँ पर है। फिर बाबा जाते रहे दिल्ली में, बाबा गए हैं वहाँ पर, ये छोटी कन्याएं बाबा के आगे गीत गा रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। तो बाबा भी सब जगह जाते थे, फिर भाई बहने माउंट आबू आते थे, फैमिलीज की फैमिलीज माउंट आबू आती गई, ये जलंधर पंजाब के भाई बहने आए हैं। फिर उसके बाद ये सहारनपुर के भाई बहने हैं, तो पंजाब हरियाणा या साउथ इंडिया सब तरफ बाबा के सेंटर खुलते गए और भाई बहने माउंट आबू आते थे। तो बाबा सबको मुरली सुनाते थे, फिर सबको प्रसाद देते थे, खुद अपने हाथों से ये प्रसाद है। और बच्चे आते थे अपनी बैटरी को चार्ज करके फिर वापस जाते थे। तो हैदराबाद सिंध के बाद कराची में रहे, कराची से फिर माउंट आबू आए। पर बाबा ने एक ही लक्ष्य सबको दिया, ये विश्व परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम है, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, परमात्मा एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन वो सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो विश्व एकता लाने के लिए एक परमात्मा को हमें याद करना होगा, क्योंकि परमात्मा एक है। तो वसुधैव कुटुंबकम तब बने जब सब एक पिता की संतान अपने आप को कहलाए, तो सब एकता आ जाएगी दुनिया में, क्योंकि पिता एक है सबका। तो यही शिव बाबा ने संदेश दिया। तो बाबा पत्र बहुत लिखते थे, बच्चों को पत्र लिखते थे, जो भी बाबा से कुछ भी उनको प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी प्रॉब्लम थी तो बाबा को पत्र लिखते थे और बाबा उसका उनको जवाब देते थे। तो ये बाबा की झोपड़ी है जहाँ पर काफ़ी डेकोरेशन किया है, और बाबा इस झोपड़ी में बैठ करके पत्र लिखते थे। तो सब बाबा से मिलने जाते थे, दिन के समय बाबा झोपड़ी में पत्र लिखते थे। चारों ओर बगीचा है और बिल्कुल एकांत का स्थान है, ये झोपड़ी में बाबा की हट में बाबा ऐसे लेट करके कैसे पत्र लिखते थे बाबा। तो ये सब उस समय था। तो बाबा की झोपड़ी में, ये बाबा का हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा गद्दी पर बैठ करके वाणी चलाते थे। तो एक हिस्ट्री हॉल है, फिर बाबा की झोपड़ी है। इस हिस्ट्री हॉल में सब भाई बहने रात्रि का क्लास करते हैं और रात्रि क्लास के साथ साथ योग तपस्या भी करते हैं। ये बाबा का कमरा है जहाँ बाबा रहते थे और सब बच्चों से मिलते थे। तो बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, और फिर 18 जनवरी को, 18 जनवरी 1969, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। अपना ये देह उन्होंने त्याग किया एट द एज ऑफ 93, 93 वर्ष पर बाबा ने अपना देह त्याग किया और आश्रम के अंदर ही उनका अग्नि संस्कार किया। तो जिस को हम कहते हैं बाबा की समाधि है, टावर ऑफ पीस, 18 जनवरी 1969 को बाबा की समाधि बनी। और हजारों भाई बहने 18 जनवरी को मधुबन आते हैं, ब्रह्मा बाबा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत आते हैं, दूर दूर से भाई बहने आते हैं माउंट आबू टावर ऑफ पीस पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ये चार धाम है ब्रह्मा बाबा के, बाबा की झोपड़ी, बाबा का कमरा, बाबा का हिस्ट्री हॉल और बाबा का शांति स्तंभ। तो जो भी मधुबन में आते हैं बाबा के बच्चे, वे सब ये चार धाम की यात्रा करते हैं। बहुत एकदम तपस्या की खान है वहाँ, और बाबा से कैसे मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत कुछ है। तो दादी ब्रह्मा बाबा के देह त्याग के बाद दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी के साथ दोनों ने ये बागडोर संभाली। इस संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अपने हाथ में लिया। तो दोनों को कहते थे दो हंसों का जोड़ा, दीदी और दादी, ये हंस दो हंसों का जोड़ा थे। कैसे इनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी सुंदर थी, जो उनके उनके जो व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ था कि उनकी प्रेजेंस में इस संस्था में बहुत उन्नति हुई। दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस संस्था की वृद्धि हुई, और वृद्धि होते होते देश और विदेश में हमारे सेवा केंद्र खुल गए। तो माउंट आबू में तो रहते थे, और 1970 में ये विदेश में लंदन गए जहाँ उन्होंने सेवाएं शुरू की, और 1972 में लंदन से पहला ग्रुप माउंट आबू आया। तब तक तो भारत में ही आते रहे, भारत से ही भाई बहने थे, लेकिन 93 में की एज में बाबा ने शरीर छोड़ा, 69 में, और 72 में हमारा पहला ब्रांच खुला लंदन में। तो वहाँ के भाई बहने यहाँ आए, और दीदी मनमोहिनी और दादी जानकी ने मिल करके इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाया। 1969 to 2007 इस संस्था का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, और कैसे जो वहाँ पांडव भवन है माउंट आबू में, जिसको हम पोकरान हाउस से पांडव भवन बना, जहाँ पर एक रेजिडेंस एरिया है जहाँ बाबा रहते थे, उसके सामने ये यूनिवर्सल पीस हॉल है, ओम शांति भवन है, जहाँ 3000 भाई बहनों के लिए हॉल बनाया है। तो बहुत दूर दूर से भाई बहने आते हैं, एक कॉन्फ्रेंस हमारी होती रहती है यूनिवर्सल पीस हॉल में। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें साधु संत महात्माओं ने भी पार्ट लिया, और ये पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई, और कैसे ये साधु महात्माएं सब आए हमारे प्रोग्राम्स में। फिर 91 में पांडव भवन के पास हमारा बहुत सुंदर ज्ञान सरोवर बना, 4 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ हमारे बहुत सारे विंग्स के प्रोग्राम होते रहते हैं। एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये एकेडमी है वहाँ माउंट आबू में 4 किलोमीटर की दूरी पर पांडव भवन से। फिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल, जहाँ 50% जो स्टाफ है वो डेडिकेटेड भाई बहने हैं, समर्पित रूप से सेवाएं करते हैं, गांव गांव में जाकर सर्विस कर सेवा करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। और 96 में ये हॉल तैयार हुआ, उस समय 60 साल हुए थे संस्था को, 96 में, 36 to 96, तो 60 इयर्स माना डायमंड जुबली ईयर था 60 इयर्स का, तो इस हॉल का नाम रखा डायमंड जुबली हॉल। तो डायमंड जुबली हॉल में बहुत प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं, 20,000 लोग इस हॉल में बैठ सकते हैं। अभी तो थोड़े हैं इसीलिए ये कर्टन लगाया गया है, तो जब भाई बहन आते हैं तो पूरा हॉल भर जाता है, तो इसको इसलिए डायमंड हॉल रखा है। तो दादी प्रकाशमणि ने दिन रात इतनी मेहनत की इस सारे शांतिवन को कैसे तैयार किया, और 85 इयर्स की आयु में दादी ने अपना देह त्याग किया 2007 में, 69 to 2007 तक दादी ने 38 वर्षों तक यह एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन करके इस विश्वविद्यालय का उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया। और 25 अगस्त 2007 को दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग किया 85 इयर्स की उम्र में। और इस हॉल के सामने टावर ऑफ लाइट है, प्रकाश स्तंभ है, जहाँ उनकी समाधि है दादी प्रकाशमणि जी की। और जो दादी ने महावाक्य उच्चारण किए वो चारों ओर लिखे गए हैं। तो फिर दादी प्रकाशमणि के देह त्याग के बाद दादी जानकी जी ने बागडोर संभाली, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। और 2020 में दादी जानकी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और इतना विस्तार किया, सारे विश्व में सेवाएं की, 140 देशों में दादी जाती रही, और जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ दादी सेवा केंद्र खुल जाता था दादी के प्रेजेंस में। तो वो इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुई। 2020 में 104 साल की उम्र में दादी ने अपना देह त्याग किया। कैसे दादी ने इतनी सेवा की, विदेशों की सेवा की, टीचर्स की ट्रेनिंग की, बहुत दादी का इतनी एक्टिव थी दादी जानकी जी। और 1 लाख की सभा में भी दादी जानकी जी प्रवचन करती थी। तो 104 साल की आयु में दादी ने अपना देह त्याग किया 2020 में। और 2021 में दादी हृदय मोहिनी जी ने अपना देह त्याग किया, वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। तो 2021 में अपना देह त्याग किया। और दादी हृदय मोहिनी जी की विशेषता थी, वो बहुत ट्रांस में जाती थी, और शिव परमात्मा और ब्रह्मा दादा की आत्मा उनके बॉडी में प्रवेश होते थे, जिसको हम अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा की वाणी इनके मुख द्वारा चलती थी, शिव परमात्मा और ब्रह्मा बाबा का कैसे उच्चारण मुरली का, वाणी का होता था। तो पीस ऑफ माइंड हमारा जो चैनल चलता है उसमें भी देखते थे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जिन्होंने पीस ऑफ माइंड चैनल में अव्यक्त बाप दादा की वाणी सुनी है, देखी है, वो हाथ उठाए, हाथ उठाए, थोड़े से थोड़ों ने देखा होगा। तो 2021 में आपने देह त्याग किया और उसके बाद फिर हमारी दादी रतन मोहिनी जी थे, फिर इस समय मोहिनी दादी हमारी हेड है जो न्यूयॉर्क में रहती है, जयंती बहन है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, वो लंदन में रहती है। तो विदेश में हमारे 140 देशों में इतने सेंटर्स है, भारत में भी इतने सारे सेवा केंद्र हैं जो हर साल बाबा के बच्चे में यहाँ आते हैं, तो बहुत प्रोग्राम्स हमारे होते जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इस संस्था में होता रहता है। हमारे जैसी हजारों बहनें समर्पित रूप से सेवा केंद्रों पर रहती है और आप जैसे लाखों परिवार के भाई बहनें सेवा केंद्रों पर आते हैं बाबा के ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए, तो वो भी हिसाब किताब सब चलता रहता है और ये संस्था दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ती जा रही है। कितने देशों में सेंटर्स और खुलते जा रहे हैं, सेंटर्स भारत में भी खुलते जा रहे हैं और आप सभी अलग अलग स्थानों से यहाँ आ गए हैं। तो ये कार्य इसी प्रकार चलता ही रहता है और आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। सबको एक ही लक्ष्य दिया है कि अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, मानव से देव बनो, नर से नारायण बन जाओ, नारी से लक्ष्मी बन जाओ। उसके लिए क्या करो, खोटे पैसों का दान करो इस यज्ञ में। शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है तो जैसे यज्ञ में स्वाहा करते हैं तो हम भी यही कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन विकारों को इस यज्ञ में स्वाहा करो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। तो आपका ये एक जीवन अगर पवित्र योगी बन जाएगा तो 21 जन्मों के लिए इतनी भगवान से हमें प्रारब्ध मिलेगी, इतना भाग्य मिलेगा। उसके लिए और कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर में जो बुराइयां हैं, विकार है, उनको स्वाहा करना है। तो कई कहते हैं आपकी फीस क्या है, हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। ये 5 खोटे पैसे दान करो, भगवान के इस यज्ञ में स्वाहा करो। तो 5 खोटे पैसे विकारों का दान करो तो इसी विकारों के दान से कैसे आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, कमल फूल समान बन जाएगा, ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और आगे जन्म जन्म के लिए आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा, मानव से देवता बन जाएंगे, फिर से भारत स्वर्ग बन जाएगा, फिर से दूध घी की नदियाँ बन जाएगी, सब देवताएं बन जाएंगे और इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। यही प्रेरणा आपको यहाँ मिलती है, वापस जा कर के आप यही कार्य करना। हम कहते हैं यहाँ से जाओ तो 5 खोटे पैसे दान करके जाओ और 1 आना लेकर जाओ। जिस जिस सेवा केंद्र के थ्रू आप आए हैं वहाँ नियमित विद्यार्थी बन करके रोज हमारे सेवा केंद्रों पर बाबा के महावाक्य पढ़ो सुनो तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप ये बुराइयों की जो जीवन बन गई है, आदत बन गई है विकारों की, वो विकार त्याग करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। तो जो अब समझते हैं ये 5 खोटे पैसे हम यहाँ स्वाहा करके जा रहे हैं वो हाथ उठाएं। हाँ बहुत सुंदर, अपने लिए ताली बजाओ। हाँ बिल्कुल, तो आपका ये जन्म तो श्रेष्ठ बन ही जाएगा लेकिन जन्म जन्म इतना भाग्य अपने जीवन में धारण करके ले जाएंगे तो ये जन्म भी सुखी तो जन्म जन्म को सुखी बनाएंगे, यही हमारी शुभ भावना शुभकामना आपके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब 2 मिनट फिर से परमात्मा की याद में बैठेंगे।
Happy।